अनपढ़ है, दूसरे को सताने के बाद भी मांगने के बाद भी जब अन्न नहीं मिलता है तब वह क्या करता है, तदा वो पितृपुत्र बरहिस्मत पितृपुत्र सकुल भक्षय। इसे प्रसंग को थोड़ा अच्छी तरह से समझने का प्रयास कीजिए। आज तो संडे है ना, समय तो काफी है, कोई बात नहीं। जब भवा कभी भी घूम रहे हैं तो इस जंगल का कोना कोना पता लगा ले क्या क्या है, तब तो उससे भागेंगे। जब दूसरे से मांगने पर भी अन्न नहीं मिलता है, मतलब पर बाधया पर पीड़न पर पीड़ा प्रदया की जीविका, जब दूसरे को सताने के बाद भी अन्न नहीं मिलता है, काम नहीं चलता है, तब तो क्या करता है कि पितृपुत्र बरहिस्मत पितृपुत्र अनुवाद भक्षयति। तो पिता और पुत्र की पितृपुत्राणाम वह एक सस्तद होता है, पितु पुत्राणाम व कुशादित्य मात्रा में जो सुपस्यति तान भक्षय की बाधते राज द्वारा पदाधिका नामीय पीड़ा होती है। मान लीजिए कोई गृहस्थ है और उसके पास अब बहुत अभाव हो गया, घर में धन नहीं रहा, खाने पीने का भी दुख होने लगा, तो वो क्या करता है, उसके पिता का पुरुष भी किसी के पास बकाया रहता है या ऋण रहता है, तो कुछ की चटाई हो या कुछ हो कुछ भी, वही कहते हैं कुछ, अथवा पुत्र का धन रह गया है किसी के पास, तो कुछ भी कुछ की चटाई भी बाकी है तो उसको मांगते मांगने जाता है, चाहे सरकार से मुकदमा करके ले चाहे जैसे ले, वो इसको वसूल करना चाहता है। इसका अर्थ यह है, अर्थ है समझने में दिक्कत हो रही है ना, तो क्लियर करते हैं। मान लीजिए मैं किसी का पुत्र हूं, हमें जब घर में अभाव हो गया, खाने पीने को नहीं मिल रहा है, तो मैं अपना रजिस्टर बैठ कर देख रहा हूं कि हमारे पिताजी ने उसको एक बोझा कुश दिया था जिसका दाम वो अभी नहीं दिया, तो हम अब वसूल करने जाएंगे, उसको स्वयं नहीं देगा तो सरकार से केस कर दो, हमारा देना ही पड़ेगा, और कुश का सूद बनाएगा, उसका सूद बनेगा, एक साल तक कुश ऐसे कैसे कैसे हो जाता है, जा करके उसके यहां कहता है चक्रवर्ती पाजी लिखते श्रृण भो मत पितु सकाशा तवाच गत वर्ष में वह कुशत प्रण गृहित, गत वर्ष तुमने हमारे पिताजी से तीन कुश लिया था या तीन बंडल कुश लिया था, जो भी सोचिए ऐसा कारण, तो अब उसका सूद दो, कई वर्ष हां दत्तम अभिमान तब ग्रैष्मिक हेमंतिका त्रिणादि दान वर्धनार्थ रीत्या अन्नम संपादे क्षण मासे तीर्ण हित गुणम भवे। तो नीति है कि यदि आप अन्न किसी को दे रहे हैं, किसी को अन्न दे रहे हैं उधार सूद पर, तो अन्नम सपादम क्षण मासे छह महीना में अन्न को देना पड़ेगा सवाई पाक, मतलब सवाई, ये नियम है शास्त्र। आप किसी से अन्न लिए, मतलब मान लीजिए एक मन अन्न लिए तो आप सवा मन देंगे, लेकिन यदि आप किसी से घास लिए हैं पुआल या कुस तो उसे दुगना देना होगा, ये एक बोझा घास लिए या पुआल तो छह महीने में उसे दुगना देना होगा, ये नियम है। तो शुद्ध इस तरह से लेना चाहिए, शास्त्र भी नियम बताता है कि शुद्ध किसको लेना चाहिए और कितना लेना चाहिए, ब्राह्मण क्षत्रिय को शुद्ध लेने का अधिकार नहीं, केवल वयस शुद्ध ले सकते हैं, और वह अभी वाणिज्य और गोरक्षा से यदि उनका काम हो रहा हो तब शुद्ध नहीं लेते, जब उससे काम न चल रहा हो तब शुद्ध लेंगे। आज तो पूरा संसार ही शुद्ध पर चलता है, सरकार सूद ले रही है दे रही है, सब जगह सारा संसार इस इंटरेस्ट में है सूद में, तो जाकर के कहता है कि देखो तुम्हारे घर पर हमारा कुश रह गया था, उसको तुमने नहीं दिया है, छह महीने में दुगना होता है, तो दुगना हो गया छह महीने में और बीत गया साल, तो फिर दुगना का दुगना दो। और यदि कई वर्ष का रह गया तो फिर दुगना का दुगना, चौगुना का चौगुना, इस तरह से कहता हमारा कुश दो। अथवा एक अर्थ करते हैं चक्रवर्ती का जो कि मान लीजिए किसी का खेत है और वो बिल्कुल व्यर्थ खेत है, उजले से है, केवल कुश उसमें उत्पन्न होता है और किसी को दे दिए खेती करने के लिए, खेती करने के लिए दे दिए, बेचारा खेती किया, उसमें कुश हुआ, कुछ हुआ नहीं। लेकिन जब हमारा धन घटता है तो हम कहते हैं हमारे खेत में से जो फसल हुई थी उसको दो। तो कहता है उसमें हुआ क्या, केवल कुश हुआ। वो कहता है तो कुश का दान दो, कुश हुआ था तो कुश का दान दो। कुश समझते हैं ना, फालतू पानी या तो ग्रास। तो किसी के पास अपना कुश भर भी पकाया रहता है तो उसको भी वसूल करता है, ये अर्थ है। उस तरह से हमारे बाप का पकाया रह गया है, या बाप जाकर के कहता है हमारे बेटे का पकाया रह गया है दो, क्यों नहीं दो, इसके लिए हम मुकदमा करेंगे, ये करेंगे। उसका अर्थ यह है कि अपना थोड़ा सा धन भी प्राप्त करने के लिए लड़ाई लड़ता रहता। अच्छा, कभी कभी दवानंद में प्रवेश करता है, जिसकी व्याख्या मैं कल कर चुका था। अब अधिक गृहस्थों को चलाने की जरूरत है। अपना घर दवानंद वचित आसाद गृहम दावत प्रियार्थ विधुरम असुखो दर्कम शोकाग्नि ना दयमानो भृषम निर्वेदम उत्पच्छत। जब अपने घर में जाता है तो प्रियार्थ विधुरम, जो उसके प्रिय पदार्थ हैं वो घर में नहीं मिलते, जब नहीं मिलते हैं तो बहुत जलने लगता है, घर में ये नहीं है, वो नहीं है, ऐसा नहीं है, ऐसा प्रियार्थ विधुर। और अंततः असुख को दर कर, घर गृहस्थी से मिलता क्या है, अंत में असुख मिलता है, दुख मिलता है। तो कभी कभी निर्वेदा मुक्त उपगच्छते, केवल यह अनुभव करता है कि घर में दुख है, वैराग्य नहीं होता है, केवल इतना ही अनुभव करके रह जाता है कि घर में दुख है बस, और सुख कहाँ है ये नहीं जानता। इतना अनुभव होता है घर में दुख है। क्वचित काल विस्मित राज को रक्षसा बहुत प्रियतम धना से, कभी कभी राज कर्मचारी इसके प्रियतम धन को छीन लेते हैं, प्रियतम असुर के प्राण को, बाहरी प्राण को, और उस समय बहुत दुखी होता है। विगत जो लक्षण है आस्त, उस समय तो ऐसा लगता है कि अब इसमें जान ही नहीं। अच्छा, कभी कभी मनोरथ में आए हुए पितृ पितामह को देखने लगता है, गंधर्व नगर का अनुभव करता है, वहां आया था कि गंधर्व नगर में प्रवेश करता देखता है और यहां प्रवेश करता है, मतलब कभी अपने पिता के साथ या पितामह के साथ बैठता है, अथवा वो मर गए हैं लेकिन कभी कभी याद करता है कि हमारे दादा कैसे अच्छे थे, हमारे पिताजी ऐसे थे, थे, और सुख का अनुभव करने लगता है बिना मतलब के, जबकि उनसे अब कोई संबंध नहीं रहा। तो इसको कहते हैं गंधर्व नगर में प्रवेश, इसकी व्याख्या में कर दिया। और क्वचित गृहाश्रम कर्म चोदना के घर गिरी मारुरु क्षमा लोक दर्शन प्रसिद्ध मना कंटक सरकरा क्षेत्रम प्रविशति प्रविशन हुआ सिदत। तो कभी कभी पर्वत की चढ़ाई करता है, गृहाश्रम में है इसलिए घर गृहस्थ होने के नाते अन्य गृहस्थों के लिए या इसके लिए भी शास्त्र कुछ उपदेश करता है, असमय जग करना चाहिए, बच्चे का विवाह हो तो उसमें खर्च करना चाहिए, उसका जन्मदिन हो तो उस पर खर्च करना चाहिए, उत्सव करना चाहिए। लेकिन यह इसके लिए पर्वत की चढ़ाई के समान दुर्गम होता है, पर अब करे क्या, चढ़ता है, दूसरे से ऋण लेकर के चढ़ता है, कहने का मतलब ये। लेकिन चढ़ने में कभी कभी स्लिप कर जाता है, गिर जाता है, तो वह गिरना क्या है, 20-25 हजार या 50 लाख 2 लाख कर्ज में पड़ जाता, यही है गिरना छलक का। चढ़ा काम तो किया, चढ़ा लेकिन गिर गया ऋण में, तो दूसरे को देखा देखी इसको करना पड़ता। और लोग व्यसित कर्षित मना कंटक सरकरा क्षेत्र में प्रवेश लेगा, तो कभी कभी विशेष कर्म के लिए ऋण तो लेता ही है, ऐसे प्रतिदिन के भोजन वस्त्र ये टेलीफोन का बिल भरना और ये करना वो करना, ये जो है इसको सरकरा के समान है, रोज पत्थर में जो पत्थर के टुकड़े पैर में चुभते रहता है, कांटे चुभते रहते हैं, फिर भी चलना होता है। वास्तव में कोई भी आदमी सुख से बिल नहीं भरता होगा, है कि नहीं? बिल भरते समय जरूर लगता होगा कि कांटा चुभ रहा है, पैर में पत्थर चुभ रहा है। मन करते समय तो आनंद आता है, बिजली जलाते समय, पंखा चलाते समय, एसी चलाते समय, लेकिन बिल भरते समय कांटा चुभने जैसा लगता है। तो ऐसा एक एक खर्च नहीं है, कांटे बहुत हैं और छोटे छोटे पत्थर के टुकड़े वो बीछे हुए हैं इस जंगल में। अजय खर्चा हो खर्चा, बच्चा पढ़ने जा रहा है तो उसको फीस दो, उसके लिए किताब लाओ, तो ये करो, फिर उसके विवाह की व्यवस्था करो, रोज खर्चा, रोज कुछ न कुछ व्यय, इसको कहते हैं पत्थर चुभना पैर में। और चलना ही पड़ता है, रोज चलना है, लेकिन ऐसे रास्ते पर चल रहा है जिसमें कंटक और सरकरा क्षेत्र, घर गृहस्थी ऐसा है कि इसमें रोज सोचना पड़ता है, उधर करो, ये करो, वो करो, ये करो, वो करो। कई बार मैं लोगों को देखा हूं ऐसे बैठे हैं और डाकिया बिल दे गया तो उस बिल को लेकर के ऐसे करते तो बहुत भारी कांटा चुभ गया उपाय करते हैं तो गलत गलत दे दिया है, कुछ इसको डिमिस करना चाहिए, ये वो ये ऐसे करो ऐसे। भोजन के लिए रोज चाहिए, उधर दुकान से बिल आ रहा है, उधर सिगरेट आदि पीने वालों का पान गुमटी से आ रहा है बिल, इधर बिल, वो बिल, कपड़ा धोने का, घूमने का, जाने का, इसको लोक व्यसित, लोक व्यसन कर सकना था। चाहे वो पति व्यक्ति भी हो लेकिन उसको भी एक दुख का अनुभव होता रहा, 10 रुपया भी उसका लगता है तब भी उसको लगता है कि कांटा चुभा है, चाहता नहीं है कि हमारा पैसा खर्च है ना। और कहीं अभी 10-20 लाख खर्च हो गया तब तो त्रिशूल ही धस गया पेट में, कहीं तो बेहोश गिरेगा 2-4 घंटा, ये क्या हुआ, ये कैसे हो गया। रोज रोज चलना है गृहस्थों को इस पथ से, फिर भी भूल करके सुख मान लेता, फिर भी गंधर्व नगर देखता, फिर भी शरीर को मुक्त मान लेता है। तो कोई है गृहस्थ इसमें ऐसा जिससे पैसा खर्च करने में दुख नहीं होता होगा? कोई ऐसा है नहीं है। अवश्य धर्म के काम में खर्च करने में सुख होता होगा, ऐसे लोग हैं जिनके कोई कहा नहीं और अपने आप कई वर्षों से करते रहते, भगवान की सेवा में लगाने पर जरूर सुख अनुभव होता है, लेकिन और काम में लगाने में तो दुख होता है। यह हो सकता है सबसे बड़ा आनंद आता होगा अपनी पत्नी में खर्च करने, वो तो भगवान से भी ज्यादा आनंद मिलता है। हम वृंदावन में देखे हैं विदेश से भक्त लोग आते हैं तो भगवान के मंदिर में दर्शन करने जाते हैं, उधर से तो डॉलर लेकर के आते हैं, 1 डॉलर का यहाँ 30 रुपये 35 रुपये मिलता है, तो 100 रुपया रक्षा में डाले तो बहुत हो गया, लेकिन अपनी पत्नी को रिक्शा पर बैठा कर लोही बाजार में जाकर कई हजार का गहना बनवाते हैं स्त्री के लिए, एकदम देखी हुई बात में कहता। स्त्री के लिए खर्च करने में आनंद है, और स्त्री यदि रात में कह दे कि आप जब मरेंगे तो मैं भी सती हो जाऊंगी, तब तो अपना सब कुछ दे दो। सूरदास जी ने लिखा है अपने पद में कि हाँ तेरे संग ही मैं जराऊंगी, प्रिया धूप धन खाए। स्त्री कहते हैं कि आप जब मरेंगे तो मैं आपके साथ ही मर जाऊंगी, मैं जीवित नहीं रहूं। अवश्य कोई पतिव्रता स्त्री ही ऐसा कहे, हलो जलो नाम चलो, लेकिन इस तरह से प्रिया धूत धन खाए हो तो धूर्तता करके सारा धन खा देती। हम समझते हैं कि गृहस्थों को हमारा ये वाक्य तो अप्रिय लगता होगा, अच्छा नहीं लगता होगा, लेकिन मैं भी दूसरे का वाक्य कह रहा, हिंदी भाषा के बहुत बड़े भक्त कवि हो गए, पुष्टिमार सूरदास जी, तो वो इस तरह की बात कहते हैं। तो शास्त्र भी यही बात कहता है, जो भी हो भगवान में धन खर्च करने में आनंद का अनुभव करना चाहिए। और यह बात जरूर है कि स्त्री और पुत्र को भी जथा जो खर्च करने में आनंद का अनुभव करना चाहिए। ऐसा कृपण नहीं हो जाना चाहिए कि बच्चा अभी मांगे तब भी न दे, स्त्री मांग रही है तब भी न दे। अब तो जीवन मृत मारा, वो तो जीवित ही मरा हुआ, जब बच्चा को ही नहीं देगा, स्त्री को ही नहीं देगा, तो उसके जीवन से फायदा क्या, तो मरा हुआ। लेकिन ऐसे बहुत से अवसर आते हैं जबकि मनुष्य धन खर्च करने में मरने लगता है, कांटा बिछा दिया जाए और सरकरा पत्थर के छोटे छोटे तीखे तीखे कण और चलने को कहा जाए, कोई चलना चाहेगा? नहीं, चलना नहीं चाहता, खर्च करना नहीं चाहता है, लेकिन होता रहा। यह है कंटकों पर चलना। कदाचित भग्नमान दृष्ट दुर्जन दंड स्वीकार अलग विद्या क्षण व्यथित हो गया ना अनुच्छीय मान विज्ञान अंधकूते अनुभव पतते। कभी कभी इस जगत में कोई व्यक्ति इसका अपमान कर देते हैं, इसके अभिमान के तांत को तोड़ देते हैं। भग्न मान दृष्ट, ये जो अभिमान है कि मैं धनी हूं, मैं विद्वान हूं, मैं बड़ा हूं, तो यह दांत जैसा है, लेकिन कभी कभी इसका दांत तोड़ दिया जाता है। दुनिया एक से आगे है कि नहीं, कहीं आप गए, मान लीजिए आप किसी संस्था में बहुत बड़े पद पर हैं, महान थाली है, लेकिन ट्रेन में जा रहे हैं तो कोई बैठने के लिए भी नहीं कहता है कि नहीं, कोई पहचानेगा भी और खड़ा भी हुए किसी के पास, जाओ यहां जगह नहीं है, उसी जगह जाओ, तो दांत टूटा कि नहीं? और तो आदमी याद करेगा कि अरे मैं ऐसा हूं, हमारे साथ सैकड़ों चेला चलते हैं, मेरे शिष्य चलते हैं, इधर व्यास पूजा में क्या क्या करते हैं, और आप बताओ हमको एक आदमी पूछने वाला नहीं है, दांत टूटा कि नहीं? और वो दांत टूटता रहेगा, संसार में सब जगह मान नहीं मिलेगा। जो कहते हैं कदाचित भग्न मान तनिष्ठ, कभी कभी उसका मान रूपित दांत टूटता है, तब व्यथा का अनुभव करता है, क्या क्या। यदि एयरपोर्ट पर उतरे बड़ा आदमी एयरपोर्ट पर किसी प्लेन से, और उसको लेने के लिए कोई चेला न जाए, क्या हो गया, दांत टूट गया, कभी दस दस कार जाती है, कभी एक भी नहीं गए, तो टूटा दांत अब सोचता हुआ आदमी आएगा दांत की चिकित्सा करने। अब दांतना है सुस्ती, क्यों नहीं गए, तुमको पता नहीं था, ये नहीं था, क्या मान चाहते, और ऐसा होता रहता, ऐसा होता रहता। एक बार की बात है, कौन भारत को स्वतंत्र करने में गोखले जी, उनका क्या नाम है, हाँ गोखले जी, वो तो कहीं रेलवे स्टेशन से उतरे, उनके साथ एक कॉलेज का लड़का उतरा, उसके पास एक छोटा सा बैग, तो वो कहता है कुली 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 था नहीं, बरसात का दिन था, सब लोग घर चले गए थे, रात में ट्रेन रुकी थी, बोले बोले तब तो गोखले जी आए, जो भारत प्रसिद्ध है नेता थे, वो उसके झोला को उठा दू, कह चलिए कहाँ चलना है, तो सुप्र चलने लगा। बाद में उस सोचा कि इनको कुछ पैसा दू, आदमी धोया बिल्कुल साधारण कपड़ा पहने थे, धोती पहने थे, सोचा कुछ पैसा था, कितना आपका हुआ, तो कुछ नहीं, नहीं नहीं आप लीजिए आप। तब तक कुछ लोगों ने आकर के उनको प्रणाम किया, वो खड़े चुके, वो व्यक्ति पूछा उनका क्या नाम है, क्या नाम है, तो उन लोगों ने कहा अरे ये तो गोखले जी, तो अब चरण में गिर कर क्षमा मांगने लगा, तो मैं आपसे ही काम कराया, क्षमा कीजिए कीजिए कीजिए। तो बताओ इतना बड़ा आदमी, उसके मन में ये अहंकार नहीं है कि मैं बड़ा हूं, तो अपने देश के पढ़े लिखे लड़के का पैर उठा दिए। हमने सुना है कि महात्मा गांधी ट्रेन में चलते हुए एक व्यक्ति ने जब थूक दिया था तो उसको पोंछ दिए थे कागज ट्रेन। इस तरह से व्यक्ति को अमान्य होना चाहिए, दूसरों को मान देना चाहिए,
लेकिन नाम की भावना रखेंगे तो बात तो क्षण क्षण में टूटेंगे। नाम के दोस्त बात टूटेंगे। हमें एक जगह गया कई आदमी के साथ, हमारे कुछ शिष्य भी थे, और एक व्यक्ति मिला और हमको कहता है तुम लोग जो कपड़ छोल हो गए हो, ऐसे कहा तो कपड़ छोल हो गए हो, एक डंडा मारा जाए तो बस वही चीत हो जाओ। और हमारे शिष्य लोग थे वे सुने तो उनको बड़ा दुख लगा। मैं तो हंस रहा था, कुछ दुख हमें भी लगा, लेकिन फिर भी मैं नजर होगा नहीं हो गया। उन्होंने कुछ कहा नहीं, मैं चुपचाप रहा। वो लोग कहने लगे ऐसे क्यों बोल रहे हैं, ऐसे क्यों बोल रहे हैं, ऐसा क्यों कह रहे हैं। बाद में उसे पता चला, हमारे गांव के पास की बात थी, तो गांव उसके गांव में पता चला कि अरे बड़ा साधु है, मतलब इस क्षेत्र का यही प्रचारक है। तो उच्चारण में गिरने लगा, महाराज मुझसे बहुत गलती हो गई, ये हो गया। अरे कोई गलती नहीं हुई, कौन सी बड़ी गलती। मैं यह कह रहा हूं कि कहीं कहीं ऐसी जगह है जहां माला पहनाई जाती है, जय बोला जाता है, सैकड़ों आदि प्रणाम करते हैं, और कहीं कहीं कपर छोड़ कहकर डंडा मारने की बात कर। हमने सूरज में पटना में बोला था जन्माष्टमी पर, लालू प्रसाद वहां के चीफ मिनिस्टर हैं, वही बैठे थे कथा में, तो मैं पूरे रातों में भाई की व्याख्या कर रहा था। जैसी बातें कहा कि सब कुछ भगवान दिए हैं, मनुष्य कुछ लेकर के नहीं आता है, उसके भगवान का भजन करना चाहिए। तुम सब लोग यहां आकर के बैठे हो, लेकिन सांस लेने के लिए हवा लेकर आए थे, और चीफ मिनिस्टर से बैठे थे, कोई दो लोग हवा लेकर आए थे, बैठने के लिए धरती लेकर आए थे, पानी पीने के लिए कटोरी भी लेकर आए थे। कृष्ण सब दे रहे हैं, इसलिए कृष्ण का भजन करो, कृष्ण के लिए एक सुंदर सेंटर बनाओ इस पटना में। पता नहीं सरकार रहेगी या चली जाएगी, मैंने भी कहा तो यश लेना चाहिए सरकार। और बहुत ताली बजा रहे थे दूसरे को, इससे चीफ मिनिस्टर का दल जो था खौफ हो गया, बिगड़ गया हम पर। वो सामने नहीं बोले, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं आपसे एक घंटा कल बात करूंगा चीफ मिनिस्टर का। तो दूसरे दिन उनको दिल्ली आना था, तो पटना एयरपोर्ट पर जा रहे थे, तब तक भूतपूर्व चीफ मिनिस्टर मिले जो हमको जानते थे, और उनसे मैं बैठा था, मिला था अच्छी तरह। तो पूछे भोजपुरी में जगन्नाथ मिश्रा, कहा हो लालू भाई, सुना है कि रात में कौन साधु से भूलंत हो गए रहे। क्या लालू भाई, मैंने सुना कि आपको रात में जन्माष्टमी की रात में किसी साधु से भिड़ंत हो गई थी। वो भी बोले थे हाँ, पता नहीं कहां से कपड़ छोड़ आए रहे हैं, हमार तो ये मन करत रहे कि वही घर उठा पटक लगा दी। और अखबार वाले इसको छापे थे, दोनों चीफ मिनिस्टर के वार्तालाप को छापे थे इसको। पता नहीं कहां से आया था, ऐसे बोल रहा था। यदि मैं कृष्ण कथा कह रहा था, मेरा आशय किसी का अपमान करने का था नहीं, लेकिन कहने का आशय मेरा यह है कि एक चीफ मिनिस्टर आकर प्रणाम कर रहे हैं, माला पहना रहे हैं, आदर से बोल रहे हैं, दूसरे चीफ मिनिस्टर का कपड़ छोड़ कर, दोनों एक ही है, कोई उसे अपमान नहीं हुआ। लेकिन जब मान की भावना रहेगी तो मान का दांत तो पग पग में टूटेगा, है ना। इसलिए अपने को बड़ा नहीं मानना चाहिए, क्षण क्षण में अपमान मिलेगा, इसका अर्थ है। और अभी किसके द्वारा अपमान मिलेगा, किसी गुरु के द्वारा, साधु के द्वारा नहीं, दुर्जन दंड सुकर, दुर्जनों के द्वारा अपमान मिलेगा इस संसार में। जो स्वयं दुर्जन है लेकिन बहुत अपमान करो, ऐसे हो, ये हो, वो हो, ऐसे हो, ऐसे ऐसे, और अपमान भी अपने स्टेटस के अनुसार होता है, स्टेटस के अनुसार होता है अपमान, जो जैसा होता है उसका वैसा अपमान करो। जैसे हमको कोई कह दे कि ये प्रभुपाद की इच्छा के अनुसार नहीं बोल रहे हैं तो हमारे लिए बहुत भारी अपमान वास्तव ये बहुत बड़ा अपमान होगा। किसी तरह का अपमान तो होगा ही, कहने वाले कहते रहे हैं, परोक्ष में जो झिल्ली है झिल लोग तो बोलते रहे हैं और सामने भी कभी कभी उल्लू लोग कहेंगे वो वो कर सामने कुछ कह देंगे कि तुम्हें ठीक नहीं कर रहे हो, ये नहीं अच्छा कर रहे हो, ये नहीं कर रहे हो, ये नहीं कर रहे हो, ऐसा होगा। संसार का स्वरूप होगा, प्राइम मिनिस्टर का भी अपमान होता है, राजा का अपमान होता है, भगवान कृष्ण का अपमान हुआ, राष्ट्रीय सभा में इस विश्व का सम्राट युधिष्ठिर महाराज उनकी पूजा कर रहे थे और शिष्यपाल खड़ा होकर लगा कहने की गाय चराने वाले की आगे पूजा की गए थे, इतने ब्रह्मर्षि राजर्षि भरे पड़े हैं, युधिष्ठिर का दिमाग नष्ट हो गया। ये आप सब लोगों को बेवकूफ बना रहा है, मूर्ख बना रहा है इस गौरी की पूजा करके, इसको पूजा करना ही था तो अपने एकांत घर में पूजा होता, सबके सामने क्यों कर रहा, किस कारण से कृष्ण की पूजा कर रहा है, किस कारण से, इसका आसन आप जानते नहीं है, गाय चलाने वाला पूजा गया और राज करने वाले लोग यहां तमाशा देखे कई तरह की बात बोला, कई तरह यहां तक कह दिया कि हमारे साथ रुक्मिणी का विवाह निश्चित हुआ था और यह जाकर के उसका अपहरण कर लाया, ये दुराचारी दूसरे की औरत को चुरा करके लाया और इसकी आगे पूजा हो रही है, इसको तो यहां पीटना चाहिए, जूता से स्वागत करना चाहिए और इसकी अग्र पूजा करें, बहुत बोला उनके भी भगवान चुपचाप। विश्व के समस्त ऋषि मुनि आए थे, नारद जी, भगवान विद्यास थे, वशिष्ठ मुनि सभी लोग आए थे, राजर्षि सब आए थे और भगवान के परम समर्थ भक्त लोग ज्यादा लोग सब थे वहां, चाहते तो शिष्यपाल को एक मिनट में मार सकते थे लेकिन फिर भी भगवान के इशारे से सच भगवान सब और इतना ही नहीं, एक बार उनको चोरी का भी कलंक लगा और हत्या का, तो कथा है कि सत्राजीत को मिले गए थे भगवान सूर्य ने लेकर के आया तो भगवान कृष्ण ने इससे कह दिया कि देखो मरी बहुत मूल्यवान है, तो 85 किलो सोना रोज उगलता था मेरे जहां भी रहता था। भगवान ने सोचा कि राजा के पास रहना चाहिए नहीं तो कोई भी इसकी हत्या करके ले लेगा, तो बहुत बड़ा धन है, तो उन्होंने कह दिया कि उग्रसेन जी को धन दे दो राजकोष में और जो सोना उत्पन्न है वो लिया करो लेकिन इसको बैंक में रख दो, रख दो। वो क्या कहा, हाँ हाँ बहुत सिखा रहा हो, मैं समझ रहा हूं, सत्राजीत का दिखाओ मत, नहीं दिया, भगवान की आज्ञा पालन नहीं किया, तो उस मुनि को उसका भाई प्रसन्न जीत अपने कंठ में धारण करके, जो जिसकी पूजा होनी चाहिए थी उसको कंठ में धारण करके और शिकार खेल चला गया, हत्या कर एक सिंह है उसको मार दिया भोले को और उसके, और सिंह को फिर वृक्ष राज जमान मार करके ले गए घर, और इधर हल्ला हुआ कि प्रसन्न कहां गया, प्रसन्न कहां गया, कौन अपहरण किया, लापता हो गया, क्या हुआ, तो ये एक छोटी सी मीटिंग करके सत्राजीत कहा कि सुनो मैं देखा नहीं हूं लेकिन मैं पूरा जानता हूं कि कौन हमारे भाई को मारा है, कृष्ण का काम है, कृष्ण हमसे कहे थे कि मारे देव और राजा पर मैं नहीं दिया, इसी पर रंज होकर के हमारे भाई को मरवाया और मेरी चुराया हुआ, बताए मेरी कहां गई थी और कौन ले गया, लेकिन भगवान पर कलंक लगा। यह संसार ऐसा है कि यहां दुर्जन दंड से दुर्जन रूपी सर्प डसते रहेंगे क्षण क्षण, तो डसेंगे, दुर्जनों को सर्प कहा गया, बल्कि दुर्जन को भस्म कर लेना आसान है लेकिन दुर्जन को समझाना आसान नहीं, वो भस्म नहीं हो सकता, चाहे पंडित कहते हैं कि माछी के सिर पर विष रहता है, सांप के दांत में विष रहता है, बिच्छू के पूंछ में विष रहता है लेकिन दुर्जन के सभी अंगों में विष रहता है, वो बोलेगा विष जैसा, देखेगा विष जैसा, चलेगा विष जैसा, वो दुर्जन संसार में भारी पड़े। वो कहते हैं कि
यदि सांप को भी प्रश्न किया जाता है लेकिन दुर्जन को नहीं किया जा सकता। इतने कुशैले सांप शेष नाग हैं लेकिन भगवान कृष्ण उनको सहन करते। सांप दुर्मुक्त हो गया लेकिन दुष्ट दुर्योधन उनको समझाने से नहीं मारे। दुर्जन को प्रश्न नहीं कर सके, दुर्योधन को प्रश्न नहीं कर सकते, लेकिन शेष नाग जैसे भयानक सर्प पर सो रहा है वो भी नित्य हो गया लेकिन दुर्जन नहीं हो सकता। तो दुर्जन इस संसार में भरे पड़े हैं, कोई कभी कभी बोलते रहते हैं तो इस समय मनुष्य विवेकहीन हो जाता है, बदला लेने की सोचने लगता है। सहना चाहिए, बदला उन्हें लेना चाहिए। अच्छा, इसके बाद कहें कभी कभी तुच्छ वस्तुओं को खोजता है। काम मधुर लवान, काम मधुर लवान, काम मधुर का अर्थ है इस संसार में जो स्त्री संग है वास्तव में वह मधु है लेकिन न मात्र है।